आज हम ड्रामा प्लान अनुसार कलर पहले मिसल जो इस संगम युग की प्रैक्टिकली अपनी कहेंगे कि इस ईश्वरी यज्ञ स्थापना की जो अलौकिक रोह को राहत देने की कहानी है हम वो आज सुनने चलते हैं। वैसे तो शास्त्रों में महाभारत में रामायण आदि आदि कई प्रकारों की कहानियां सुनी है लेकिन ये प्रैक्टिकली आंखों देखी जीवन के अंदर अलौकिक यादगारों की कहानी है जो पल पल सामने याद करो तो एक पल पल सामने आता और ये दिल का प्यारा आवाज होता कि कितने न हम वही कलप पहले वाले सौभाग्यशाली बच्चे हैं जिन्होंने अपने प्यारे शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के अंग संग ये अलौकिक चरित्रों को पाया अथवा इस अलौकिक चरित्रों को देखा और उसी चरित्रों में ही हमारी पालना हुई उन चरित्रों से ही हमें बाबा ने ये अपना अलौकिक जन्म सिद्ध अधिकार दिया है। तो जैसे कल हमने मधुबन वासियों को सुनाया तो वो कहानी थी सिंध हैदराबाद जो आज पाकिस्तान है जो बहुत करके बाप ब्रह्मा बाबा की अथवा हम सबकी जन्म भूमि है और उसी जन्म भूमि पर ही ये अलौकिक जन्म की भी हमारी वही भूमि है। लौकिक जन्म की भी वही भूमि तो अलौकिक जन्म की भी वही भूमि है और यज्ञ की स्थापना की भी अलौकिक वही भूमि है और उसी अलौकिक हैदराबाद भूमि के से हम सब अनेक बाबा के बच्चे आज भी इस समय यज्ञ में भी है अथवा कहां बाहर भी है कहीं तो इस समय भी शरीर छोड़ के भी अपने एडवांस पार्टी में गए हैं। अगर वह भी नाम लियूं लिस्ट तो बड़ी हमारी लिस्ट है जैसे उसी दिन भी बताया कि इस हमेशा हम जब भी ये वो दुनिया के सामने श्राद्ध कहते, हम तो प्यारे बाबा के बच्चों का वतन का भोग कहते, हर साल उन आत्माओं को अनेकों को याद करते, बाबा वतन में बुलाते और अपना यज्ञ का प्यारा ब्रह्मा भोजन उनको खिलाते। तो हमारे सामने वह अलौकिक माँ रखी भी आज जैसे मेरे सामने आते, फिर से मैं उनका नाम लियूं तो जैसे हमारी पहले तो प्यारी जगत अम्बा माँ, जिसका आज इतना कितना गायन सारे भारत में हो रहा है नवरात्रि का, फिर हमारा भाऊ विश्व किशोर जो इस यज्ञ का बहुत बड़ा विशेष आत्मा रही और जिसका यज्ञ में बहुत बड़ा पाठ रहा, क्योंकि वही हमारे इस यज्ञ का बहुत बड़ा अंग संग बाप दादा संग रहने वाला और समर्पण का एक विशेष उदाहरण रहा। बहुत बड़ी यज्ञ से उनके प्राण रहे। उनके बाद आप हमारी प्यारी मीठी मीठी दीदी, जो आप हम सब उसको जानते हैं, जिसका भी कितना यज्ञ का पाठ कहा, जिसका कल बताया कि अगर गोपियों में गोपी रही, नाम भी गोपी था, अब प्रैक्टिकली गोपियों में गोपियों का अगर विशेष से विशेष पाठ था तो वे हमारी मीठी मीठी दीदी का था। और उनके साथ हमारी बीरचंद्रा दादी, जो के हमारी इस यज्ञ की बड़ी बहन बड़ी दादी, सदा हम उनको सब हम मानते थे और थी भी इतनी और बहुत रायल, बहुत अपने विशाल दिल वाली, जैसे कि यज्ञ की और बड़ी माँ हो,
राजमाता,
बड़ी माँ कहा राजमाता कहो, और प्यारी अम्बा माँ की बहुत फास्ट जैसे कि गहरे फ्रेंड भी हो, बच्ची भी थी तो फिर साथ साथ एक सहेली के रूप में सखी के रूप में भी बीज दादी का मामा के अंग संग बहुत बड़ा पार था और बाबा के साथ तो उनका बहुत बड़ा विशेष हमेशा ही पार रहा। बाबा भी उनको बहुत बहुत प्यार से आगे ही सदा रखते थे। और फिर ऐसे ही हमारी पुष्प शांता दादी, जो भी आप सब जानते कि बॉम्बे में हमारी बहुत मीठी बड़ी दादी थी और बॉम्बे में उसने तो रात दिन हरी हरी सेवाओं में दिया, कोलाबा सेंटर में रहती है और आज भी वो कोलाबा सेंटर जो है इतना बड़ा, वो उनके प्यार और प्रेम से, और उनकी भी एक दो अक्षर की हिस्ट्री है। वह हमारी पुष्पांता दादी बहुत बड़े रायल परिवार की थी और खुद ही सब में बड़ी थी, लेकिन उसका ये एक बहुत बड़ा यज्ञ का हिस्ट्री में है कि वह एक ढक से सर्व प्रकार से चाबियां दे के हैंड सब करके बड़ी खुशी से और अपनी वहाँ सब कुछ बच्चे घर सब छोड़ के एक अकेली साड़ी में वह निकल आई थी कि बस मैं तो चली प्रभु के घर। ये उनका बहुत बड़ा एक त्याग है जिसने एक एक भी रुपया हाथ में नहीं लिया, ऐसे वो निकली जबकि वह बहुत बड़ी घर की जैसे कि रानी थी। ऐसी हमारी कई महारथी जो कि बाबा की सेवाओं में गए हैं, हम कितनों के नाम लिए, ये हमारी यज्ञ के पुराने हैं। तो मैं कल में उन सभी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन हमारी हैदराबाद सिंध में पहले ओम मंडली, फिर कैसे हम ओम निवास में आए, और ये हम कल हिस्ट्री सुनाई है और आज हम फिर चलते हैं कि कैसे हम लोग के ऊपर ये पिकेटिंग वगैरह का बहुत बड़ा खेल चला। हम उनको टॉर्चर्स नहीं कहते, लेकिन ये भी उन्होंने पार्ट था जिन्हों के इस सब कारण हम लोगों में एक बड़ा और विश्वास और एक शक्ति और एक बल और त्याग और एक नष्टुम हुआ कि हमारे को एक और भी ताकत मिलती गई। हम तो उन्हों का भी थैंक्स मानते। अगर ये इतना वो लोग नहीं करते तो कई प्रकारों की और भी कुछ ना कुछ नीचे ऊपर में मोह ये वो हो सकता। लेकिन कहा जाता है जब मैदान आता है तो योद्धे महारथी बन उनका सामना करते तो और उन्होंने एक हिम्मत और विश्वास आता। तो हम ओमनिवास में सभी वहाँ पर थे और अब उसी ओमनिवास जिसको मैंने बताया कि 1937 दिवाली में उसी ओमनिवास के अपनी यज्ञ की स्थापना हुई, जिस यज्ञ में हम सभी भी सरेंडर हुए और न हम लेकिन कहें कि ब्रह्मा बाबा भी अपने सब कुछ सर्वस्व उसी ओम मंडली माता के में समर्पण किया अथवा विल किया और सब कुछ उसी दिन मामा के अम्बा माँ के जगत अम्बा के हाथ में चाबियां दी और उनके बाद हमारी यज्ञ की संभालने वाली यज्ञ माता ममा रही। और बाबा तो कहा कि हमारे थे ही बाप दादा डबल सोल तो वो तो हमारे प्यारे पालना कहो अथवा ये ज्ञान की परवरिश करो जो कहो वो तो प्यारा बाबा ही हम सबको ए टू जेड सब सिखाता रहा। परंतु थी सारी पालना की हमारी निमित्त मम बामा। अब उसी के भी हमने बताया कि उसी ओम निवास के जब बोर्डिंग हुई है जिस बोर्डिंग में जो सरेंडर हुए है वो है 1937 दिवाली के दिन उसकी निमित्त सेवा के लिए हम सबको भी सरेंडर होने का एक मौका मिला। जिसकी हम बताऊं चंद्रमणि दादी शांतामणि दादी दादी हाथ उठाओ और हम तीन और बूढ़ी दादी बैठी है बूढ़ी दादी ये सब हम उसी घड़ी के सरेंडर है और आकर के उन बच्चों के पालना के निमित्त उस ओम निवास में अपने लौकिक माँ बाप वगैरह से स्वीकृति पत्र लेके पहुँचे और उसी के बोर्डिंग में हमारी सबसे बड़ा यादगार को निमित्त को हमारी गुरदार दादी और पालू बहन पालू
हाथों तो
ये सब हमारे बोर्डिंग किया लच्छू पालू लच्छू और ईशु ईशु अच्छा और कौन है मेरे ये सभी हम वहाँ के यज्ञ के पहले पहले निमित्त बने हुए बच्चे हैं। उसके बाद अब आता है ड्रामा कि बताया कि प्यारा बाबा कराची में समय प्रति समय और हम तो हैदराबाद में रहते थे और बाबा समय प्रति समय कराची में चले जाते थे कभी दो दिन चार दिन। कराची हैदराबाद ऐसे था कि बाय ट्रेन 3 घंटा ही लगता था 3 घंटे पर था ना
बाबा ऐसे पूना बॉम्बे
जैसे बॉम्बे पूना ही कहो ऐसे कराची थी सिंध की राजधानी और हैदराबाद ऐसे ही था जैसे पूना में एक बिजनेस हो वगैरह ऐसे वहाँ पर थे। परंतु अपने रूप में एक हैदराबाद अच्छा शहर था टकरी वगैरह भी थी तो हवा पानी कराची से भी हैदराबाद का अच्छा था और हवा पानी सब वहाँ का अच्छा था। तो मैं एक उसी गरीब फिर मैं हैदराबाद की बात सुनाती। ये हमारे हाथ में स्वयं बाबा का हस्ताक्षर पत्र है जो बाबा खुद लिखता है मैं स्वयं को कैसे अर्पण करता हूँ। एग्जाम्पल कि ये उसी घड़ी से हम सब का यादगार पत्र है लौकिक माँ बाप खुद हम लिख के पत्र दिया है कि हमको बाबा करते। मैं पढ़ के सुनाती हूँ पक्का सिंधी पत्र है। ओ मंडली रूपी माता के प्रणाम प्रणाम सिंधी है पक्का। ओ मंडली रूपी माता खे प्रणाम, हिंदी समझा ना, खे माना को, माँ मोकल सा, बाबा जी सही है लेखराज, सही है बाबा जी लेखराज, अभी ब्रह्मा बाबा थोड़े नाम पड़ा है। माँ मोकल सा ओ मंडली में ज्ञान, माँ अर्थ बुधाया थी, पहली माँ सिंधी पढ़ लेती हूँ फिर हिंदी सुनाऊंगी। माँ मोकल सा जगह परी है थोड़े आगे राखे पढ़ना, माँ मोकल सा ओ मंडली में ज्ञान अमृत पियन है प्यारन वास्ते अचा थो। पहले सिंधी सुनो, मुखे मोकल जैन वारे के अन्य अन्य शक्तियों चंगी तरह सुजानन दिव्य दृष्टि सा। लेखराज अब मैं हिंदी बोलती है, ओम मंडली माता को प्रणाम, ओम मंडली रूपी माता को, हम कहते थे ओम मंडली माता, ओम मंडली रूपी माता को प्रणाम। मैं माँ मोकल सा माना मुझे मोकल से छूटी से मुझे छूटी से ओम मंडली में ज्ञान अमृत पीने और पिलाने लिए, उसी समय से बाबा की सर्विस का संस्कार पीने और ज्ञान अमृत पीने और पिलाने लिए आता हूँ। मैं मोकल से माने छूटी से मैं ज्ञान अमृत पीने और पिलाने आता हूँ। मुझे छूटी देने वाला, अब बाबा को छूटी देने वाला कौन, पहला सवाल है बाबा को छूटी देने वाला कौन। अब उसी से समझो, जब मैंने कहा उस टाइम तो सब ज्ञान गुप्त राज सब कहीं गुप्त, मुझे छूटी देने वाले को, देने वाला कौन, शिव बाबा। मुझे छूटी देने वाले को अन्य अन्य शक्तियाँ अच्छी तरह सा पहचानती है दिव्य दृष्टि द्वारा, अन्य अन्य शक्तियाँ दिव्य दृष्टि द्वारा पहचानती है अच्छी तरह से। ये पत्र है 18 पहली 38 18 जनवरी 1938 कराची का है, ये पत्र कराची का, और साइन है लेखराज। सुना, अच्छा ये बाबा का हस्ताक्षर पत्र है स्वयं, ये बाबा के लाल अक्षर है, ये बाबा का हस्ताक्षर पत्र है। अच्छा ये सुना एक पत्र, अब मैं एक सैंपल दूसरा भी पढ़ के सुनाती, ऐसे पत्र कुछ निकले हैं। अब ये एक पत्र है ये फिर एक पत्र है हमारी लौकिक माँ और लौकिक बाप का ये लौकिक बाप लिखता है सती, मैंने बताया सती बहन माना कुंज बहन की लौकिक माँ जो शांता क्रूस में और रहती थी, वो लौकिक में बड़ी बहन थी, आशरी छोड़ दिया। माँ पैंजी बालकी सती बाई खे, सिंधी में बाई कहते, ओम मंडली में ज्ञान अमृत पियन है प्यार लाए वदे प्रेम सा मोकल जाथो। गोपाल दास बड़े प्रेम माँ समझ गए ना, माँ पैंजी बालकी सती बाई खे ओ मंडली में, माना ये बड़ी बेटी को प्यार से कहते हैं, छोटी को नहीं, बड़ी बेटी को ये लोग बाप भी प्यार से रिस्पेक्ट से, ओ मंडली में ज्ञान अमृत पीने और पिलाने लिए बड़े प्रेम से छुट्टी देता हूँ। गोपाल दास आसुमल वो है बहुत पुराना पत्र, समझे, ऐसा ही कईयों के अलौकिक माँ का भी है। माँ पैंजी दिए सती अखे है ना, ओ मंडलिय में आत्म विद्या वठर लै प्रेम सा मोकल जाती, आत्म ज्ञान माने भी माना कि लौकिक से इस तरह से हम लोगों को पत्र वगैरह मिलते थे और आते थे। मैंने हाथ तो देखा गुलजार का भी उसमें पत्र वो अभी निकला नहीं होगा। मैंने कहा था शशि को कि तुम तो ढूंढो मेरा पत्र है, मैं देखा था लेकिन फाइल से कहाँ मिले पता नहीं, दादा के पास है, विश्वरतन दादा पास है या किसके पास है, निकला था पता नहीं क्या बात थी तब निकाला था, है मेरा। और उसमें तो ये लिखा है मैं अपनी बच्ची को कृष्ण अर्पणम करता हूँ। उसने तो मेरे को तो ऐसे लिख के दिया, सभी का है, हम सब का है। और तो इसीलिए बाबा ये बात उसी घड़ी जैसे कि डबल सोल का पार्ट चलता था, और ये तो बाबा कहते उसी गुया राज को तो बाबा जानते, हम लोग तो सब अभी बाबा के नए नए फूल ज्ञान में चल रहे थे। अब आती हूँ कि रामानुसार
नाम कभी पड़ा बाबा,
वो अभी पीछे आती है, वो बहुत दूर पर। फिर हम आती हूँ कि हम आए हैं कराची। बाबा ने देखा कि हैदराबाद में बहुत थोड़े हंगामे बढ़ गए तो, और टोटल थोड़ा बहुत भी हुआ। वैसे भी बाबा की एक प्रेरणा चल रही थी, ये जो गायन है कि नंदी पार करके गए हैं, आता है ना कि कृष्ण को नंदी पार करके ले गए। तो हम तो उस टाइम कहा ना, तो हमारे आंखों में तो सारा दिन श्री कृष्ण ही बसता था, हम तो कब बाबा को ऐसे देह के साथ में इस तरह से देखते ही नहीं थे, कब कभी कोई बातचीत से देखते थे नहीं, तो हमारे तो आंखों में सामने सदी कृष्ण बसता था। और श्री बाबा तो सूखम में योग करते ही थे। फिर आए कि बाबा ने सबको हमको हैदराबाद से कराची में बुलाया। अब कराची में बाबा ने इस तरह सारे बंगले को सजा के ठीक ठाक पूरा रखा, मम्मा पहले गई है, बाबा है और भी, और हम दादियां बच्चों को लेके बाकायदे और वहां पहुंचे हैं। दादी वाली थी 38 दिवाली। तो जब हम वहां पर पहुंचे हैं तो बाबा ने बहुत अच्छा प्यार से हम सबका वहाँ स्वागत किया। वो भी हमारा लिए बहुत शाही एक नवाब का बंगला था, बड़े रोड पर, हाई रोड पर, आगे बड़ा गार्डन था, और वहाँ हम पहुँचे और वहाँ बाबा ने हमारा सब कुछ वहाँ इंतजाम
कराची सदर बाजार जहाँ से पुल थी, फिर हम बाबा के पास
कैप्टन ब्रिज थी आज। तो बाबा उस टाइम पहला अभी एक ही बंगला था जब हम वहाँ आए हैं। फिर वहाँ अपनी बाबा बच्चों को सबको जैसे स्कूल हो गए ऐसे पढ़ाना वगैरह शुरू किया। और तो इतने में हमारी जो ये सब बहनें थी, मिसाल सामने में पहला नंबर दीदी, ये मनोहर दादी, ये सभी अब वे हैदराबाद रह गई क्योंकि ओम मंडली में आने जाने लगी। हम लोग तो ओम निवास में जो सरेंडर हुए वे सब आए, अब ये जो ओम मंडली सत्संग में आती थी ये लोग कैसे आवे, क्योंकि मनोहर दादी ये सब तो ओम मंडली सत्संग में आते थे। हमने बताया हम तो ओम निवास में सरेंडर थे तो हम तो उधर रहते थे, अब बाबा उधर रहते थे तो ओम मंडली में, अब ये लोग कैसे होवे। तो इन्होंने भी ये फिर मैं दो क्या कि इन्होंने यूनिटी करके और क्या किया कि सारा झुंड का झुंड अंदर ही अंदर सारा टाइम बना के हर एक रात की ट्रेन होती थी 2 बजे, जब तुम सोए रहो हम चुपचाप भगवान के घर चले, ये सब चुपचाप आधी रात को निकल स्टेशन पर पहुंचे और 2 बजे उसी ट्रेन में सब की सब झुंड निकल आए, और घर वाले सवेरे उठे तो देखे ये हमारे घर में कोई है ही नहीं। और ये भी कोई गुप्त वायर, कोई टेलीफोन वगैरह नहीं, लेकिन कैसे इन्होंने अपना सब कुछ एक दो को इशारा दे दिया, क्योंकि मंडली में तो ये लोग जाते थे चुप चुप के, फिर वहां से ये पहुंचे। अब ये जो पहुंचे फिर तो बाकी भी हैदराबाद में तो हाय वेला मच गई, क्या हुआ क्या हुआ, ये भी नहीं, वो सुबह को उठे वो कहे ये मेरी नहीं, वो कहे वो मेरी नहीं, वो कहे अरे ये क्या हो गया। तो बाबा ने तो फौरन टेलीग्राम दिला दिया कि भाई इनो कोई आप लोग अपने अपने घरों में टेलीग्राम दे दो कि हम पहुंच गए हैं इधर, आप हमारी चिंता नहीं करो। तो ये लोग सब तो आ गए। तो बाबा कहा कि बाबा हमारा ताई, बाबा कहते हैं ना मैं तो ज्ञान का सागर भी हूँ, तो मैं प्यार का सागर भी हूँ, तो मैं कायदे का भी तो सागर हूँ। तो बाबा ने इन सभी को कहा मेरे पास नहीं रह सकते, तो हमारे बंगले में तो नहीं रह सकते। तो उसी घर ये सामने ही एक बिल्कुल समझो यही मकान, इतना ही आमने सामने मकान था, वो बड़ा बंगला खाली पड़ा था। फौरन उसी बंगले में इन सबको कहा वहां रहो, यहाँ इसी बंगले में हमारे पास में नहीं रह सकते, ये भी बाबा हमें कायदा सिखाया, ताकि कोई भी पूछे मेरे पास नहीं आए हैं वो वहां रहते हैं। हमारे पास में नहीं है, कोई को भी पूछना है तो उधर जाके पूछो, हमारे पास कोई नहीं है, वहां रहती है उनसे जाके पूछो।
दीदी को हेड,
तो फिर दीदी उसके लिए बनी हेड। और भी आने लगे तो और भी एक बंगला था, वो भी हमारे बंगले के पीछे बंगला था, तो वहां बाबा ने दीदी को हेड बनाया। और दीदी ने कहा जी हाँ मेरे पास आई है, मैंने उनके लिए ये सिलाई क्लास खोला है, मैं क्योंकि दीदी हमारी लौकिक में सिलाई की बहुत बड़ी टीचर थी, लौकिक में जैसे कोई अच्छी होशियार टीचर हो वैसी होशियार टीचर थी। तो बाबा ने कहा तुम तो दीदी बनी, तो बहनों के ऊपर तो बहने हो गई, तो बाबा तो नहीं रहा, तो हाँ हम सभी और मेजर है, हम कोई सगीर नहीं है, हम मालिक है, हम आए हैं और हमें नहीं जाना है, हमको वहाँ पर छुट्टी नहीं मिलती, हम नहीं रह सकते, हम श्री कृष्ण के सिवाय नहीं रह सकते, उसके लिए कोई हमें रोक नहीं सकता। तो बाबा ने इनो को उसी हिसाब से उसी बंगले में रख लिया, और बंगला तो आमने सामने था। फिर हमारी उधर में बड़ी अच्छी कहो तो यज्ञ की बड़ी शाही, जितना बाबा का परिवार बच्चे हम लोग ये वो देखो तो बहुत संगठन हो गया, ये लोग भी सामने ही तो थे, हो तो एक ही, बहुत अच्छी पढ़ाई हुई शुरू हुई। अच्छा तो फिर हमारे पास में कराची में कोर्स करने वाले, ये कोर्स कराना भी उसी घड़ी से ही शुरू हुआ। फिर देखो कोर्स करने के लिए कराची वाले कहीं आने लगे, और हम लोग भी और एक एक टेबल डाल के दो कुर्सी चार कुर्सी बगीचा बड़ा था, कभी कोई को कोर्स करा रहे हैं, कभी कोई को कोर्स करा रहे हैं, बड़ी रिमझिम मची। और बताया कि रिमझिम के साथ ये भी होता था कि दिव्य दृष्टि का तो सदैव पाठ चलता ही था, फिर आने वाले ओम की धुनी हुई और दिव्य दृष्टि में गए और बहुत ध्यान दीदार फिल्म चलने लगा, और ये भी फिर आगे बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया। तो फिर वो हैदराबाद में जो हमने बताया नहीं कल भी, तो वो जो हमारे बड़े प्यारे मित्र मामी काके नानी चाचे जो बड़े हमारे प्यारे प्यारे मित्र थे, जिन्होंने हमें इतना त्याग सिखाया, उन्हों को बड़ी त्याग लगने लगी, करे तो क्या करे। तो उन्होंने बहुत ही और जोश में उनके प्लान चलने लगे क्या करें। तो उन्होंने साधु वासवानी को जाके कहा कि अब आप हमारे इन बच्चियों का किस तरह भी हमें वापस दिला दो। वे लोग गए साधु वासवानी के पास, साधु वासवानी जानते हैं वो भी हैदराबाद का था, था तो वो हैदराबाद का, तो उसको भी बहुत मानते थे। अब वो साधु वासवानी सवेरे सवेरे अपनी शाही सेना के साथ आके पिकेटिंग करने वो पहुंच गए। अरे सारे गेट पर देखो तो उनकी सारी सेना बैठी है, सोए पड़े है और पिकेटिंग कर रहे हैं। अभी ये थोड़ा सुना,
ये बात नहीं तो साधु वासवानी जो है वो पिकेटिंग करता है, और ये साधु वासवानी जो है वो अर्जुन भाई है नहीं, उसका नानकाना वो था घर कृपालानी, बड़ा बड़े थे, बड़ा घर था, तो वो वहाँ था। तो बाबा ने हमको भेजा तो आप संदेश ले जाओ और उसको जाके कहो, क्योंकि साधु है नहीं वो, फिर भी सुनेगा, जनता नहीं सुनेगी इस बात को, जिसका ईश्वर से प्यार होता है उसको इस बात का पता होता है। तो कहा तो उनको कहो, दादा कहते हैं तो हमने ऐसा सुना है, परंतु एक हफ्ता जो है आप पहले, दादा आपको निमंत्रण देता है तो आप आंखों देखा, जो आप देखो इसमें कोई भी ऐसी बात देखो, फिर बाद में भले पिकेटिंग करना, क्योंकि आप तो बड़े साधु हो और आप में हमारा सारा फेथ है, जो राइट रॉन्ग आप समझ सकते हो ईश्वर मिलन के बात को। तो हम बाबा का संदेश लेकर के और आई, आई तो उनके वो खुद ऊपर था तो नीचे उनके शिष्य थे, तो मैं उनको कहा तो मेरे को था दुआसवानी से मिलना है, तो इनके तो बुद्धि में थी नहीं, तो पता नहीं हमारे गुरु को नहीं ये जादू कर देवे, डर था इनको। तो उसने कहा तो नहीं, और हम आपको उनसे नहीं मिलने देंगे। मैं कहा आप क्यों कहते हो तो नहीं मिलने देंगे, जब दादा की बात है और वासवानी की बात है, संदेश ही मैं हूँ, तो आप भी संदेश दियो उसको। तो दादा ने ऐसे कहा है, भेजा है मिलने के लिए, वो कहे मैं नहीं मिलता हूँ तो मैं लौट के जाएंगे, ऐसे कैसे लौटेंगे, तो आप अनुसार जाओ। तो ये जो है वो गए और उसने कहा नहीं आने दो, अच्छा था बहुत वासवानी तो कुदरत था, हाँ शिष्य थी दादी जान के उसके,
हम भी ज्ञान से पहले हाँ। स्टूडेंट
फिर मैं जब गई वहाँ तो वो गद्दी पर बैठा था और मैं बैठी, तो मैंने बाबा का संदेश उसको दिया, तो उसने कहा ठीक है मैं चलता, उसने हाँ मान लिया। तो मान लिया तो उनके शिष्य बहुत बैठे थे और वो समझते थे पता नहीं इसने जादू बादू किया, एकदम हाँ कर दी इतने, और गुरु को तो वो रोक नहीं सकते है नहीं, वो पावर वाला था बहुत, कैसे रोके। तो उसने उठ के हथियार होके कहा मैं आपके साथ ही चलता हूँ।
पैसे तो हाँ। देखा जावे तो बहुत बहुत पैसे, साधु वासवानी का नाम भी है,
निरंकारी था
बहुत,
निरंकारी थे
बहुत अच्छा।
फिर वो नीचे कार थी उसमें
बहुत पक्का कृष्ण,
फिर हम कार में बैठे, वो भी बैठा मैं भी बैठी, तो जो शिष्य थे ना वो कार के आगे सो गए। अब कार कैसे चले, चल नहीं सकते नहीं, उन्होंने आपस में प्लान बनाया सब इधर उधर से,
जादू ना लगा
कुछ, हाँ तो उन्होंने आगे सोया, तो वो कहा अब मैं क्या करूं, मैं कहो चल नहीं सकता हूँ, उतरा और नहीं चला। हम लौट के गई और बाबा को जाके बताया, तो दूसरे दिन फौरन जल्दी जल्दी इन्होंने किया, फिर ना कुछ कोई आए संदेश देवे क्या करे, तो फौरन उन्होंने आगे तैयारी करके रखी थी नहीं, तभी वो फिर दूसरे दिन दूसरे तीसरे दिन पिकेटिंग शुरू हो गई। तो जब ये पिकेटिंग शुरू हुई तो ब्रिटिश राज था, तो एक फोन किया वहाँ ब्रिटिश राज जो मुखी थे नहीं, तो वो सब ऐसी लश्कर जैसी लड़ाई के तो बेले के यार चारों तरफ किले के साथ चारों तरफ कोठी के खड़े हो जावे नहीं, ऐसे वो आए थे और एक मिनट में जो है आए और उनको हटाया रहा, इतनी बड़ी भारी पिकेटिंग बंद हो गई उस टाइम। और उस टाइम ऐसे मनोहर का बहुत, मनोहर और गंगे इनकी माताएं जो दोनों ही थी नहीं, तो
तो वहाँ मोटा साहब क्या कहते हैं उसको, तो वो बाबा के बंगले के साथ साथ उनका बंगला था, तो जो एंटी थे तो वो वहाँ जाके बात करते थे, नहीं तो प्यार बहुत हमारा था उनसे। परंतु क्या हुआ, उन्होंने बता बता के रो रो के और उसको कहा कैसे भी हमको बाल किया लेके दियो उसके उसमें, तो वो भी जैसे उसके तरफ थोड़ा हो गए सुन सुन के। तो वो टाइम पिकेटिंग का प्लान में और उसमें फिर उसने हमको मदद नहीं की, उनके तरफ हो गया। तो ये जो है इनसे, इसकी तो हिस्ट्री है कैसे इनसे पर्सन किया है क्या किया है
वो,
हाँ फिर सब जो ये ऐसे पिकेटिंग पूरी हो गई।
माँ बाप ने कहा ये सब कुछ ही नगर तो ने 2 मिनट जाके क्या बात की जो उनको जादू लग गया। पहले हमारे को कार में उसने बिठाया, आगे दिखाई तुम जाओ तुम्हारी माँ तय करिए जाओ मैं तो कार लिया। तो हम छोटे छोटे थे, पैसा देखा जैसे रावण मुझे मरो हमारे को कार जाओ जाके कार में तुम्हारी माता पिता सब रो रहे हैं बैठो।
अच्छा यहाँ यहाँ आके
बोलो अच्छा मैं ऐसे तो कई
नहीं बात मैं बताऊँ इसी का वनोर दादी का
एक बड़ी दिली अलग
ये बात आई कि वासवानी का हमारी पिकेटिंग तेरी उसमें इनका विशेष पार्ट हुआ कि क्या था कि कराची में कृष्ण ब्रिज पर एक था ये मोहिता भाई रहता था, ये मारवाड़ी है अभी भी शिव रतन मोहिता का, यहाँ भी बहुत बड़ा इंडोर वगैरह में उनका बहुत बड़ा बिजनेस है। तो वो कराची में एक माननीय सेठ माना जाता था और बाबा का बंगला नसीब में इधर था, तो इसीलिए उनको बहुत हमारे लिए प्यार था, रिस्पेक्ट था। बाबा को सामने देखता था, सुपाओं पर जाता था बड़े प्यार से। तो ऐसे उन्होंने समझा ये लोग इनको मानते हैं, अब हम इनको कहीं जाके रोके कि हमें बच्चियां निकाल के दियो, तो वो जो जो होती थी वो उनके पास में चले जाते थे रो रो के कि हमारी बच्चियां मंगा के दियो। तो उसकी बात मनोहर दादी कहती है कि उस टाइम में वो उनको कहते थे और वो आके प्यार से बाबा को कहते थे बाबा झगड़ा है माताएं हैं रोती है आपके तरफ से इनको कहो कि जाओ फिर क्या होगा, होंगे तो ये आप ही आएंगे, अब मैं फिर आपको इन बच्चों को बुला के दिखाऊंगा और आप बाबा इनको दादा छुट्टी दियो और इनको इशारा करो, आप सिर्फ इशारा करो ये चली जाएंगे। और बाबा के न मेरे पास आई है न मैंने बुलाया है न मैंने कुछ कहा है, आप जानो बच्चियां जानो। बाबा भी न्यारा प्यारा हो जाता था, लेकिन फिर मतलब उसने बहुत कहा तो ये लोग अभी फिर ये सब वापस कैसे गए हैं। फिर आती हूँ नेक्स्ट हिस्ट्री है कि सगीरों को वारंट मिला। ना जी बाबू जी बोलो।
तो वो जब उस निकाल के हमारे गेट
से सो गया,
तो जब गेट के आगे निकला तो वो अपने जोश में सोखड़े पत्थर फेंकना शुरू कर दिया। बस वासवानी ने ये देखा ना तो अपना हाथ निकाल दिया, कहा तुमने तोड़ फोड़ किया अभी मैं तेरे साथ नहीं जाऊंगा।
चला गया नहीं सुनूंगा। तो उसको ये जो पत्थरबाजी मारी ना अंदर, गेट तो हमारा समझो गेट इतना हमारा मकान से दूर था, हम लोग सब मकान में थे, गेट हमारा इतना ही दूर था जैसे हम समझे कि अपने गेट से और वो गेट, ये भी नजदीक है लेकिन वो इनसे भी काफी दूर गेट था। तो गेट से बाहर थे हम लोग तो अंदर थे, आगे तो गार्डन था, तो हम लोग को तो पत्थर उन्होंने भले फेंके, हम लोग भी अपने बंगले के पहरे पर थे लेकिन बाहर नहीं थे बगीचे, पत्थर फेंका लेकिन हमें नहीं। तो उस पर उसने कहा कि आप लोगों ने जो ये पत्थरबाजी किया इसलिए मैं अभी आप लोग का साथ नहीं दूंगा, अच्छा मैं जाता हूँ। वो जब निकल गए तो इनो की पिकेटिंग का फोर्स चला गया और मोहिता भाई ने भी कहा, फिर वो समझो पिकेटिंग छोड़ के और वापस चले गए। तो ये एक फिर अखबारों में छपता गया और ये एक हंगामा टोटल बढ़ता गया। तो आखिर वो लोग समझे क्या करें, और इसी बीच में हमारे साथ में कराची गद्दी थी, राजधानी थी, ब्रिटिश राज था,
हम लोगों को ये सब क्योंकि जैसे मिलिट्री आई सब देखा पिकेटिंग पिकेटिंग तो बाबा ये भी रखते थे उन मिनिस्टर्स वगैरह को अपने साथ रखते थे। उसमें मुख्य ये था कि जो आती है ना पुतलू बहन
मुख्य
बिरज इंदिरा की बड़ी बहन, तो बड़ी बहन का जो पति था मुखी वो मिनिस्टर था, वो भी उसी टाइम में मिनिस्टर था। जैसे माना देश में वो मुखी माना सारे सिंधु का मुखी, सिर्फ हैदराबाद का नहीं सिंधु का वो मुखी था और बहुत बड़ा जमींदार था और साथ साथ वो मिनिस्टर भी था और वो बाबा को बहुत मानता था। पुतलों को इसीलिए छुट्टी मिलती थी बिरजेंद्रा के कारण भी, चाहे वैसे बाबा से उनका बहुत दिल से प्यार था। तो उसने अपना गुप्त पाठ सब अपने गवर्नमेंट में मिनिस्ट्री में अपना ये कौन है ये क्या है वो अपना ही अपना परिचय से अपने मिनिस्टर्स वगैरह को बहुत प्यार से और बुलाता था परिचय देता था। तो क्या हुआ कि अपने अंदर मिनिस्ट्री जो थी वो सब हमारे तरफ उन्हों तक ये बातें सब पहुंच गई थी और वो सब हम लोगों को मानते थे। मुझे एक भी याद है उस टाइम में गुलाम अल्लाह बख्श था, उस वो था तो मुसलमान लेकिन बहुत बड़ा रिस्पेक्ट था उनका, बहुत बड़ा प्यार था मानता था। अच्छा इसी बीच में हमारे साथ में गवर्नमेंट तो थी, कुछ भी होती थी हम उन्हों को खबर कर देते थे। तो मैं बता रही थी कि मुखी के कारण गवर्नमेंट हमारे साथ थी और साथ में ही ये भी साथ में खेल था, ड्रामा में ड्रामा था कि मुखी का जो दूसरा भाई था समझो चचेरे भाई वो फिर थे निर्मल शांता के ससुर और वो फिर बहुत एंटी थे। अब समझो यहाँ भाई भाइयों के बीच में भी एक बहुत मानने वाला तो एक बिल्कुल ना मानने वाला। तो बाबा मुखी को कहता था क्योंकि पुतलू और बाबा हमेशा मुखी को कहता था क्या
विद्रोह
बाबा हमेशा इनको कहते थे विद्रोह, इसकी रिस्पेक्ट प्यार बुलाना करना। मैंने बताया ना कि ये मुखी जो था पुतलू इनका हैदराबाद सिंध में मेरे ख्याल में नंबर वन या टू कहा जावे ऐसा शाही पैलेस था मुखी गोविंद राम, मुखी गोविंद राम पुतलू को आप लोग यहाँ आती है देखा होगा कई बार पुतलू आई है। अच्छा तो पुतलू का यहाँ पर आना होता अभी भी बॉम्बे में है और वो बिरजेंद्रा की बड़ी बहन है। तो उसके कारण वो जो था वो बहुत एंटी था, वो भी मुखियों के बीच में माना जैसे वो था हैदराबाद का मुखी वो हुआ सिंधु का मुखी तो बड़ा तो मुखी गोमद्राम हुआ क्योंकि वो मिनिस्टर था लेकिन वो हैदराबाद का भी मुखी था। तो इसके कारण है और दोनों के बीच में अब हो गया उन्हों का भी आपस में टक्कर। खैर उसका सब ड्रामा में तो मैं एक बीच में बात सुनाऊं तो बाबा तो हमारा बड़ा रमणीक चतुर तो बाबा ने क्या किया और चंद्रमणि दादी अब वो बताएंगी कि उसी घड़ी एक गीत था इस पाप की दुनिया से दूर कहीं ले चल ये रिकॉर्ड था। तो बाबा ने बड़े प्यार से वो रिकॉर्ड रिबन बिबिन बांध के और कहा कि तुम जाके उसको रिकॉर्ड दियो। अब दादी बताए
हर कृष्ण दास था और ये
और वो जो घर था ना हैदराबाद में
देवा
ये बाबा का बंगला बीच में दरवाजा हो और वो उनका बंगला मैंने दीवार एक ही थी और बीच में दरवाजा था।
तो मैं जब गई तो उन्होंने कहा मैं ये याद सौगात करके ऐसे भेज देती हूँ तो ये बाबा ने रिकॉर्ड दिया है इसमें देखो अपना ही वो सभी कहती है इस पाप की दुनिया से हमको कोई अच्छी आराम की दुनिया मिले चलो जा शांति हमको मिले। मैं आज यही बोला तो उसको इतना गुस्सा आके लाल लाल करके कहा मैं तो रिकॉर्ड दिया तो में वो एकदम ही तोड़ डाला था सुना ही नहीं पूरा। तो मैं क्या कहती हूँ फिर मैं कोशिश की तो उसने समझा ले कौन सा जादू इसमें डाल के आती आई है और देने के लिए, तो मेरा कुछ समझा ही नहीं, मैं तो लौट के आ गई।
देखो जादू है, जादू है, देखो धुआं निकलता, धुआं निकलता, देखते नहीं हो, देखते नहीं हो, रिकार टूट गया। फिर समझ, ये भी एक बाबा कोशिश करते थे, बाबा सदैव हमें ये सिखाया कि हमारे लिए वो मित्र है, हम कोशिश करते थे उन्हों को भी अपनी शुभा लाने दे, कभी हम लोगों को उन्हों से नफरत हो, गुस्सा आवे, ये लोग क्या करते, लड़े नहीं, वो कितना भी हम लोग का सामना करते थे, हम उन्हों को बहुत प्यार से, बाबा हमें सिखाया कि नहीं उन्हों को जाके तुम प्यार से फिर भी समझाओ, फिर भी समझाओ, ये हमारे मामे है, प्यारे है, मित्र है, इन्हों को समझाओ। हमारे दिल में कभी बाबा ने उन्हों के या हम लोगों के दिल में दुश्मनी आवे, नफरत आवे, गुस्सा आवे, हम उन्हों से डरे नहीं, हम वो कितना भी गाली देते हम प्यार से उन्हों से व्यवहार, ये इतना बाबा ने हम सबको पहले ही सिखा रखा था। फिर समझो ये सब चला,
दादी कोरट की वो
फिर आती है, फिर उनके
बारत में फिर
बात आती है के आए उनके बाद में ये जो ओमनिवास में चला, फिर उनके बाद में अब ये जो बांदेलिया आई, उनका बड़ा शोर चलने लगा, क्या करे, तो उन्होंने युक्ति निकाली, वारंट निकाला, और वारंट निकाला, पहले जाते थे मोहिटा के पास, उनको कहते थे, फिर ये लोग वारंट लेके आते थे। अब वारंट माना
दादी, पहले इन्होंने एक वो क्या किया, जिनके भी माँ बाप थे ना जो नहीं थे इस ज्ञान में, उनके हर एक के ज्ञान में भी और जिन नहीं थे सबके माँ बाप के पास गए, तो वो लिख के देवे तो भाई ये हमारी कुमारिया जो है सगीर है, यानी 18 बरस के अंदर है, क्योंकि उसके कारण उनको लड़की मिल सकती है, अगर 18 बरस से बाहर होंगी तो नहीं मिल सकती है। तो एक एक के पास गए और उन्होंने कहा ये आप लिख के हमको दियो, ताकि मम्मा के माँ के पास भी गया गए तो आप अपनी बच्ची के लिए लिख दियो, तो भाई ये जो है वो 18 बरस से छोटी है। उसने कहा मैं लिख तो देती हूँ परंतु वो है ही उसकी बड़ी सारी उसकी, तो मैं कैसे उसके लिए कुछ कह सकती हूँ, कहने क्या जबरदस्ती करके उससे भी लिखाई दिया, पर वो तो जवाबदार थी तो उनको तो कोई कुछ कह नहीं सकता है, बाकी जो आयु में बड़ी थी नहीं 18 बरस से, उन्होंने जब भी सुना वो ले आए लिखत सारी सभी के माँ बाप की, तो इनको ले जाना है कोरट में। तब भी जो है हमारी सीतू बहन वगैरह और भी थी, तो उनको कोरट के आगे खड़ा किया, तो अभी आप जाओ घरों में, दूसरी भी थी अच्छी अच्छी कुमारियां बहुत अच्छी थी, ये उसमें पालू छोटी का भी बहन थी, ये थी परिवार थे जैसे अंदर बहने बीच में। ये आप अपना बताओ थोड़ा, मेरे तो इतना याद नहीं है। हाँ फिर वो जो है तो जब भी इसने सीतू को गुस्सा आ गया उस टाइम, और तो बेचारी चुपचाप ऐसे रो रही थी, कोई ऐसे कर रही थी, पर सीतू ने क्या किया, जब भी उसको कहा जाओ सीतू को, तभी उसने एक कुर्सी उठा के जज को लगाई तो जब आप झूठ को सच्चा और सच्चा को झूठ कर गए,
मेरी उम्र ये
जब भी मैं अपनी आयु बताई गई हूँ और उन्होंने आपको ऐसे लिख दिया, हमको कितना दुख हुआ होगा इसका, तो बहुत दिल से दुख दर्द भरे आवाज से उसने किया, तो भी उसने नहीं माना, कैसे लगी थी बड़ी थी, बड़ी थी क्या आपको क्या हुआ, सत्य को झूठ, झूठ को सत्य कहते हो, पर माने कैसे, वो सब मिले हुए थी। फिर ऐसे करके सब को लीज गए, सारा झुंड जो था अब उन्होंने हाथ से दिया उनको हैदराबाद,
मैंने रोज दो चार के आते थे, वो दो चारों को वारंट के जरिए,
और वहाँ जाके अभी बांदेलिया का पाठ खुलता है, तो वहाँ जाके जैसे इसकी बहन थी पालू छोटी थी बड़ी थोड़ी विष्णी थी, तो उसको क्या किया, सुअर तो बहुत गंद खाता है ना, आपने देखा होगा वो खाते ही गंद है,
तो गंध उनको गोश्त जो खाए नहीं उनकी बुद्धि गंदी हो जाती है। तो इन्होंने क्या किया, सुअर का गोश्त जो है वो इन्होंने सब्जी में मिला दिया,
पाउडर पाउडर
कोई मिला के, अब इन्हों को पता न पड़े तो इस खाने में हमको क्या,
वो कोई जादूगरों से जो होते है ना ये मंत्र जंत्र पढ़ने वाले, उनके द्वारा ये सुअर के गोश्त का पाउडर करके और चाहते थे कि हम इन बच्चियों को खिलावे तो जादू उतर जावे, जादू उतर जावे, जादू उतर जावे।
ये मोमा वगैरह कई सबके ऊपर ऐसे आपस में मिलके ये प्लान बनाया था, फिर कोई को तो लग गया बुद्धि ऐसी थोड़ी हो गई, थी उनको नहीं लगा, जैसे हमारी पालू है ऐसी
कई बहनों
कईयों को लगा ही नहीं,
उनको वाइब्रेशन था दिया कि ये भोजन में कुछ देते, उन्होंने कई दिन अपना खाना खाना छोड़ दिया, कहा मैं तुम लोग का खाना नहीं खाना है, आप लोग हमें खान पकाने दो तो अपने हाथ से पका दे, नहीं तो हम भले पानी पर रहेंगे, जल पर रहेंगे, जल्दी अपना नल कैसे लेंगे, हम आप लोग से नहीं लेंगे। वो भी कहे नहीं, ये भी कहे हाँ, ऐसे करके ये जो वारन से गए ना, अब उनका वहाँ झुंड भरा अंदर ही अंदर हो गए और तालों के अंदर बंद, निकलना नहीं मुश्किल हो गया, परंतु ये सब अंदर बहुत बहुत
नहीं, वो 16 तालों के अंदर 16 ताला शील इंदिरा को था। तो बाबा ने कहा, तो बच्ची का आवाज मेरे को आ रहा है, बाबा बाबा उसको कौन छुड़ाएगा, कौन जाके पत्र मेरा देगा, मैं कहा मैं जाती हूँ, क्योंकि वहाँ दादा रतन चंद्र का मकान था तो सब बांध लिया, वहाँ कच्चिया हो जाती थी, एक ही मकान वो रह गया दादा का, तो हमको जाना आना तो सहज था नहीं, तो मैं वहाँ चली गई, और वहाँ चली गई तो वो सचमुच कैसे हम उनसे मिले, तो कुदरती वो ऊपर खड़ी थी जैसे एक व्योग्र होती है नहीं, ऐसे वो ऐसे खड़ी थी, तो मैं वहाँ पीछे द्वारे से, क्योंकि ऐसे आगे द्वारे से उनको पता लग जाएगा, ऐसी जगह से जाऊँ जो पता न पड़े, तो हम पीछे द्वार से जब गई तो वो बहुत खुश हो गई, और ऐसे 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 कहा, मैं ऊपर देखा तो मैंने उसको बताया पत्र है बाबा का, तो कहा पत्र है बाबा का, उसने वाला कहा धागा लिया किया, क्या मैं भेजती हूँ, इसने पत्र बांधो और बांधो मैं खेच लेंगी, देखा तो मैंने उसने मेरे को भेजा और मैं वो चिट्ठी जो थी उसने बांध के और उसको भेजी और उसने पढ़ी, इसे शरीति से जो है सब जो है सब अंदर बांधती, गंगा की हालत न पूछो, गट्टे मुआफिक जैसे जानवर होता है उसको चारपाई से बांधा हुआ था, कोई को कुछ किया हुआ था, उस टाइम बांधे की बात
वो तेरे दादी मनोहर और गंगे बाबा इनको कहते थे, हरी इनका नाम था हरी और गंगे, ये दोनों सहेलियां थी, क्योंकि ये बहुत बहुत सख्त बांधेलियां थी, तो वो तो मनोहर दादी अपनी हिस्ट्री सुनाती कैसे मैं गंगे के पास जाती थी, तो मैं एक दिन की बात सुनाऊं, मुझे बाबा ने गंगे के पास भेजा, इसको भेजा तो गंगे क्या थी कि उनको घर में ये चारपाई उनके पायों से जंजीरें डाल के पाँव में चेन पड़ी हुई, ताला पड़ा हुआ, सोई पड़ी थी, और ड्रामा अनुसार वो जिस मकान में सोई पड़ी थी उसके ऊपर में एक अपनी स्टूडेंट मुरली बहन थी, उनका घर था। अच्छा, हमें ये खबर पड़ी तो हम को बाबा ने कहा ये चिट्ठी उनको पहुंचाना है, अब कैसे पहुंचावे, रंगीन कपड़ा पहना अच्छा जैसे हम बाहर की कोई हूँ, छिप के उनके घर से गई, उनके घर से गई, आप लोग को पता है कि सिंध में वो चिमनिया होती है, तो पहले मैंने देखा कि अकेली है या कोई है, तो खिड़की से देखा तो वो ऐसी खिड़की होती कोई नीचे से देख नहीं सकता जब तक बाहर मुँह, तो मैंने देखा कोई नहीं है, फिर मैंने ओम शब्द धीरे बोला तो उसने वो सोई पड़ी ऐसे, तो उनकी आंखें थी ऊपर, तो जैसे मैंने देखा तो उसको कहा कोई है कहने बाबा की पत्र, और उसको मैंने ऊपर से पत्र दिया, फिर उसने नीचे में वो अपना पत्र भर के और धोती में छिपा दिया कि कोई देखे नहीं। ऐसे बाबा के हम बच्चे कहा न कहा अनुचर बन करके और उनको पत्र देते थे। फिर तो हुआ वारंट की बात, फिर मैं आती हूँ। वारंट से हमारी कई बहनें चली गई, यहाँ तक तो अब बढ़ता गया ये वहाँ तरफे हम लोग के पास रोज वारंट आवे, और कभी तो ऐसा भी हुआ और कोई वारंट न होवे तो आकर के कहे मैं ऐसे भाई हूँ, मैं अपनी बहन से मिलने आता हूँ, मिलने के बदली में वो उठा के उनको बालों से पकड़ के डोली कर करके उठा के ले जाके कार गेट पर खड़ी रहती थी, जाके कार में फेंक देते थे। ऐसे भी कई बहनों को किया और हम लोगों से ये सहन न होवे। हमारी बहने ऐसी जाती रहे आकर बाबा क्या होगा, हम भी देखते रहे। कितनी बहने हमारे साथ थी, सब चलती गई, हम तो वहाँ थे। इसी बीच में मैंने एक दिन सुनाया था कि मम्मा के लिए भी वारंट आ गया। उसकी बात ये है कि सवेरे फिर मैं एक बीच में मम्मा की स्ट्री, सवेरे बाबा उठा, मम्मा बाबा आया क्लास में, तो मम्मा को क्लास के बाद कहा राधे, ओम राधे, आज तुम्हारे ऊपर में भी वारंट आएगा। मम्मा ने कहा मेरा कोई है ही नहीं जो मेरे पर कोई वारंट आवे, मैं तो बड़ी हूँ। जो मम्मा करीब उस टाइम में 19-20 बरस की थी और रोचा मना, वैसे वो लोग एक भाई तो था नहीं मम्मा का, और रोचा एक माई थी और माँ तो मानती थी भले आज्ञान को तो मानती थी, तो मम्मा ने कहा कभी नहीं हो सकता। खैर बाबा ने कहा आज देख लेंगे। माना कोई बाबा तो हंसी किया, बाबा को पता नहीं था। अच्छा देख लेंगे। अच्छा भाई हुआ ठीक 10 बजे, बराबर 10 बजे कोई ना कोई का वारंट आता था। पहला वारंट मम्मा के लिए पहुंच गया। बुलायो मम्मा को ऑफिस में, मम्मा तेरे लिए ये वारंट आ गया। पारी हो गई, ये कैसे हो सकता, मेरे लिए वारंट कौन है, रुचा की बराबर सही पड़ी हुई है, कैसे ये होगा। मम्मा ने कहा ये ठीक है, हम जवाब देती हूँ, मेरे को तो अपनी बर्थ डेट भी याद है, इसलिए मैं तो अंदर हूँ नहीं, एज के सगीर नहीं हूँ, मैं तो एजेड हूँ। मम्मा ने बात कह दे उसको, कहा चलो कोर्ट में, मैं जज के सामने बात करूंगी, पीछे में आप लोग आप मुझे हाथ नहीं लगाओ, मैं सीधा कार में बैठती हूँ, कोई मुझे हाथ नहीं लगा, कुछ भी नहीं करेंगे आप लोग, करेंगे कुछ भी आवाज किया तो मैं कभी नहीं चलूंगी, मैं सामने चलती हूँ, भले मेरे माँ को सामने बुलाओ, मुझे वो नहीं। गई कोर्ट में, कहा ये बिल्कुल झूठी सही है, अब मेरी माँ कर नहीं सकती, अगर उसकी सही है उनको मेरे सामने बुलाओ, मैं अभी घर ही जाऊंगी, वो कभी नहीं मेरे लिए कह सकती क्योंकि मेरी ये डेट है, मेरी ये बर्थ डेट है, मैं इतनी एज की हूँ, आप खुद भी कानून को जानते, मैं सगी नहीं हूँ, मैं नहीं जा सकती हूँ, किसी हालत में नहीं जा सकती हूँ, अगर आपको हो जाए तो माँ को सामने बुलाओ, मैं इनों के सामने क्यों जाऊँ, ये कौन है, ये मेरे कोई केयर टेकर है, नहीं मेरी माँ मरी है उनको बुलाओ, मैं इनों के साथ नहीं जाऊंगी, मैं भी यहाँ बैठी हूँ मैं नहीं जाती हूँ। मम्मा तो बोलने में होती थी एकदम शिव शक्ति, जज को जवाब ही देने नहीं आया, कहा अच्छा नमस्कार तुम जाओ। और मम्मा वापस आ गई, तो बीच में जब मम्मा ने कहा बाबा, तो बाबा ने कहा अच्छा आए तो है कोर्ट के अनुसार, तुम जाओ तो सही, तो उसी घड़ी का गीत है, फिल्म ने हम आजाद करंदों को इस बंधन में है बांधा, मम्मा ओ मम्मा ड्रामा ने भी तुम्हें इस बंधन में है बांधा, बाबा भी बड़ा समझे, राधे राधे फिल्म ने, राधे राधे ओ प्यारी राधे, फिल्म ने हम आजाद करंदों को बंधन में बांधा, हाँ बेटी राधे जाओ जाओ जाओ, पापा बड़ा मजा करता था। खैर फिर तो मम्मा आ गई, तो कोरट तो कुछ कर नहीं सकी, और फिर खबर पड़ी कि बराबर हो जैसे जबरदस्ती किया है, और मम्मा तो गई नहीं। खैर इसी बीच में फिर आगे ये किस बढ़ता गया, गवर्नमेंट को भी इन्होंने मजबूर किया, ये इधर तरफे पब्लिक अंतर हो गई, फिर आकर के केस हुआ। फिर वजीरों ने इस्तीफा दिया और बहुत हंगामा होता गया। फिर अखबारें, ये नहीं कि बाबा कहता है कि मेरी तक भी अखबार चली गई कि एक सिंध में निकला है, उनको 16,000 रानियां चाहिए। मतलब काफी झमेला था, सिंध में ये बात फैलती गई, इसलिए सिंधियों को तो पता है और हम लोग बड़े मस्ती में। तो क्या हुआ, फिर ये कोरट का केस हुआ। कोरट के केस के कारण इन्होंने हमें वारंट दिया कि आप लोग यहाँ मकान में नहीं रह सकते। तो रिजल्ट ये हुई कि हमें मकान छोड़ना पड़ा। अब हम लोग सब इतने कहाँ जावे, तो बाबा तो सदीव भाई प्रभु चरित्र तो हम इसको ही देखा। तो बाबा ने क्या किया, कहा देखो सब अपने अपने लौकिक का वो कनेक्शन रखा, परिवार परिवार होके अलग अलग मकानों में जाके रहो। बाबा समझो, बाबा का छोटा लौकिक परिवार और शांत तमय का परिवार, वो तो अपना था ही बंगला, उसी बंगले में जाके रहा। और हम लोग बच्चों के साथ, जिनों की माँ बाप को छुट्टी थी, जिनों को तो वारंट आया नहीं, वो तो हमारे पास में थे बच्चियाँ बच्चे, तो हम लोग एक 3-4 फ्लैट लिया, उसमें जाकर के हमने हम मकान लिया फ्लैट। भाई अलग अलग फ्लैट है, कोई इसके नाम कोई उसके नाम, हम भाई इसमें बच्चे रहो, इसमें बच्चियाँ रहो, इसमें हम बहने, हमने जाकर के फ्लैट में रहना हुआ। लेकिन रिस्क इतना स्ट्रिक्ट था बाबा भी कानून में, हम बाबा से मिल नहीं सकते थे। अरे आप लोग सोचो, बाबा कहे कि नहीं कोई नहीं मिल सकता, और हमारा प्राण बाबा, हम बाबा से बिछड़ के फ्लैट में फंस गए, बाबा उधर बंगले में बैठे हैं, हम बाबा के पास न आ सकते न जा सकते, नीचे पुलिस का पहरा, हम उतर नहीं सकते, हम जा नहीं सकते, हम बाबा से मिल नहीं सकते, बाबा हम पास नहीं आ सकते। ये भी
दादी उसी पहले, दादी ये जो भवन था ना बाबा का, जहाँ बाबा रहा था, तो साथ में हम रहे थे, राजा भवन
पीछे
पीछे फ्लैट में हम गए हैं, तो वहाँ जो दीवार थी नहीं, तो वो नहीं होती है जिससे बाबा वहाँ नहीं चलाए, तो हम वहाँ बैठ के सुने क्या मैं करूँ, माइक माइक ऐसी थी जो वहाँ शुरू कर आया हम बंद भी कर सके, तो हमको ऐसे लगता था जैसे हम बाबा के साथ है, रोज बाबा क्लास कराता था,
वो फिर बता रहे एक था बड़ा
बहुत अच्छा प्रोग्राम
जिसमें बाबा रहता था, जिसमें ऑफिस क्लास व्लास सब होता था, और साथ में कंपाउंड वाल, समझो कंपाउंड वाल जैसे मेरी ये कंपाउंड वाल है ना, कंपाउंड वाल के साथ में दूसरा भवन था जिसको हम कहते थे राधे भवन। तो मम्मा और हम उसी राधे भवन में बहने बरी रहते थे, तो बाकी भी जो वारंट पहले निकला, तो पहले तो हम उसी बड़े बंगले में जो बाबा संग रहते थे, हम बहने आ गए सब मामा के साथ उसी बंगले में, और भाई लोग और बच्चे वो सब रहे बाबा के बंगले में। भाई हम बाबा और हम नहीं मिल सकते, पहला तो ये हो गया हमारे ऊपर, वहाँ यो का कानून क्या लगा थे 44 कलम लगा कि हम बाबा के साथ नहीं मिल सकते। तो अब क्या करें, तो क्या होता था बाबा तो हमारे कंपाउंड वाले, हम बाहर मैदान में, बाबा ऊपर गैलरी में, ऊपर फ्लोर था, बाबा गैलरी में वाणी चलाता था और हम कंपाउंड में वाणी सुनते थे। हम बाबा से सामने में आगे नहीं मिल सकते थे, बीच में है दीवार, बाबा ऊपर से वाणी चलाता, हम कंपाउंड में सुनते। तो माइक थी, पुलिस गेट पर है, तो कहा गेट तो हमारे से बहुत काफी दूर था, बंगला हमारा दूर था, तो गेट तो था, पुलिस थी बाबा के बंगले पर, हमारे बंगले पर पुलिस नहीं थी, बाबा से नहीं मिल सकते थे ना, तो पुलिस वहाँ थी, वो वहाँ बैठे रहते थे कुर्सियों पर आराम करते थे, और हम आराम से क्या गैलरी से बाबा से हम रोज सवेरे 1 घंटा खड़े खड़े, बाबा वहाँ वाणी चलावे, हम यहाँ सुने, हम बाबा हमसे, हम गीत गावे, हम गीत गावे बाबा गीत में जवाब देवे, बाबा गीत गावे हम जवाब देवे, ऐसा हमारा रोज सवेरे सवेरे मिलन हो जाता था। ये तो इतनी अलौकिक थी जो हम क्या बताऊं। ऐसे करके मतलब हम बाबा से मिलते थे, लेकिन बाकी बाबा का वहाँ रहना, हमारा वहाँ खाना पीना, उधर का उधर उधर, बाकी हम प्रैक्टिकली सचमच उसी नियम अनुसार हम बाबा से, मेरा ख्याल है 3 मास तक हम डायरेक्ट बाबा से पास में नहीं मिले, हम 3 मास का हमारे ऊपर कलम था। और उसी कलम के बाद भी फिर ये बात आई तो हमें उधर से भी हटाया, फिर हम जाके फ्लैट्स में रहे, फिर हम फ्लैट्स में भी 3 मास रहे, फिर बाबा ने अलग अलग किया, भाई दीदी का परिवार एक अलग स्थान पर रहे, हम लोग बच्चों से अलग रहे, और चंद्रमय दादी के परिवार दूसरे, ऐसे हम 5-7 जगह में,
हम कुमार यहाँ सब आपस
में थी, बाकी सब बिखर गए। खैर ये भी ड्रामा 3 मास चला। अब इतना सामान, कोई कम सामान था, हर टाइम 3 मास में सामान इधर से इधर ले जाओ, उधर से इधर ले आ जाओ, वो कोई कम बात थी। उसी में एक हंसी की बात सुनाऊं कि जब बड़ा बंगला हुआ तो क्या हुआ कि इतने लोग, कम से कम हम जब भी आकर के इकट्ठे हुए पहले पहले, तो मेरा ख्याल है कि 150-200 हो गए, तो 150-200 का खाना पीना भी तो होता। तो बाबा ने भाव को लिखा कि आप कोयला भेजो धनबाद से, मैं हिस्ट्री बताऊं। तो एक भोगी हमारे पास कोयले की आ गई। अच्छा, कोयला तो हमारे पास आ गया, रख दिया। अरे वारंट निकला जावे, बंगला छोड़ते जावे तो कोयला कहाँ ढोए। फिर कुछ छोड़ दिया, कुछ उठाया, हमने कहा ये भी एक खेल में खेल हो गया। ऐसे करते और फिर हम लोग अपने फ्लैट में रह गए। अच्छा, उनसे पहले एक और हंसी की बात सुनाऊं। जैसे हम कराची में आए, अभी ये अवारण पारण पीछे होता, बीच में पहली बार, एक दिन बाबा सवेरे सवेरे उठ के, और बाबा ने क्या किया, एक न्यूज़पेपर में एक सूचना भेजी। क्या भेजी? कि हमारे नाम से, नाम तो रामा था, तो नाम से बाबा ने अखबार में लिख भेजा कि ऐसी ऐसी नाम की एक ब्राह्मणी है, और उनको ऐसा 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 गुणमान, ऐसा ब्राह्मण बच्चा चाहिए, और जिसको जो ऐसा ब्राह्मण बच्चा होवे वो इसी पोस्ट बॉक्स नंबर पर अपना पत्र लिख भेजे।
इसमें बाबा ने सीता और राम का मिसाल दिया, तो जैसे सीता और राम ने सीता को कैसे वरमाला पहनाई, चुना, अपने जैसा किया, वैसे ही जो है अपने जैसा बनाया, तो ऐसा कोई हो भी राम जैसा जो इस सीता को आके वरी, जिसमें सीता का
सीता राम ने धनुष तोड़ा, ऐसा कोई अच्छा
धनुष तोड़ने वाला हो भी, तो वो हमारे आगे आगे और उनसे
उनसे ये हो जाएगी, वो उनको वरेंगी।
अरे कितने लड़के आए,
अरे फिर
तो बेचारी लड़के ही आवे, मैं मरूंगा इनके पीछे। अरे कितने लड़के, हम लोग सब हार खाते जावे, बाबा उनसे तारा पूछता जावे और सब लौटते जावे, आखिर सब हार गए, कोई नहीं ऐसा था जिसने जो
होना चाहिए। धनुष मारना है पवित्रता का,
पवित्रता का है।
पहले तो सवेरे अखबार आई, ये तो पीछे की बात है, अखबार आई तो मेरे को कहा कुमार का, ये तेरे नाम से बाबा ने अखबार डाली है। मैं गई बाबा के पास, मैंने कहा बाबा ये आपने अखबार में भेजा। इतना बाबा मैंने कहा बाबा आपने ये कैसे भेजा, कम से कम और तो कुछ नहीं, लोग एक बाप सुनेगा कहेगा इनको क्या हुआ। बाबा को तो दिया थी, था तो कुछ नहीं, पर लड़के तो क्या है, कोई चुनरी, कोई सिंदर, कोई नथनी, कोई इतने इतने तो पोस्ट कटी हो गई, सब कोई धनुष तोड़ने वाला तो निकला ही नहीं, जिसको कोई चीता मिले वो बेचारे नमस्कार करके ही सब चले, कोई धनुष तोड़ने वाला ही नहीं
निकला। आत्म साक्षात्कार किया
हाँ, जिसने आत्म साक्षात्कार किया हो, जो ऐसा पवित्रता का घनिष्ठ हो रहे, वो इस सीता को वर सकता है। बाबा ने कोई कंडीशन थोड़ी, लेकिन उनके बुद्धि में तो नहीं आया कि आत्म दर्द क्या होता है या पोतता। खैर, ये भी बाबा एक रंभिक हुई। फिर दूसरी बात कि क्या था कि एक दिन बाबा अखबार में, उस टाइम ब्रिटिश राज था ना, तो फोर्ड कंपनी बहुत बड़ी उस टाइम नंबर वन गाई जाती थी और अच्छी थी, तो बाबा ने अखबार में डाला, नहीं अखबार में आया था हु इज हु, बुक छपता है ना, तो अखबार में भी आया हु इज द रिचेस्ट इन द वर्ल्ड। बाबा ने अखबार में डाला ओ मंडली इज द रिचेस्ट इन द वर्ल्ड। लोग सिंधी सुन के कहे ये तो बड़ा कमाल करते जाते हैं, बड़े उन लोगों का वो जब देख करी लाइफ आई ना, पीछे वो कहते थे देख लेना एक दिन आएगा खाते खाते खूह कूट जाता दादा का, जब खूह कूट जाएगा तब तुम लोग हमारे पास आएंगे। हम कहते थे हम प्राण छोड़ेंगे, हम भूखे रहेंगे, लेकिन तुम्हारे द्वारा हम नहीं आएंगे, हमको जाना है, तुम भी हो हम भी हो, तुम्हारी हमारी बीच की, हमारे साथ प्रभु है। अरे भगवान किसको भूखा नहीं रख सकता, हम तो कभी नहीं। तो बस काफी चली। खैर, आखिर ड्रामा आके पूरा हुआ, 3 मास हमारा वारंट का पूरा हुआ। पूरा हुआ इसी बीच में वो केस चला, कोर्ट में केस चला, तो हमारा उस टाइम में और हमारा भी वकील था और उनका भी वकील था, क्योंकि बाकायदे अब केस चला है कोर्ट के द्वारा, तो गवर्नमेंट बीच में आई, तो गवर्नमेंट के कारण सारा हुआ। तो अब उस केस में हमारा वकील जो था, उसकी एक ही खूबी कि उनके दिल में ये नारियां है, इन नारियों के ऊपर अत्याचार है, मैं भी पूरा गवर्नमेंट से लड़ के इन नारियों को मैं जरूर इस गवर्नमेंट से मुक्त दिलाऊंगा। उनका भी एक दृढ़ संकल्प था, उसको नारियों के लिए बहुत प्यार था। अरे स्त्रियां, अरे नारियों के ऊपर ये इतना सितम, क्योंकि उनको मालूम तो पड़ा हम लोग के ऊपर बहुत सितम है, इसीलिए वो भी उसी दृढ़ संकल्प से और चला। और वैसे वो भी गवर्नमेंट का वकील था, साथ था, फिर चीफ मिनिस्टर, फिर उसी वकील ने काफी कोर्ट में अपना सामना किया और आखिर वो दिन आया जो ब्रह्मा कुमारियों की ओ मंडली, ब्रह्मा कुमारी नाम नहीं है, ओ मंडली ने केस जीता और सारे सिंधु देश में हा हा हो गई कि ओ मंडली ने केस जीता, गवर्नमेंट भी हार गई, पब्लिक भी हार गई और इन्होंने। अब जब केस जीत गया तो बस बात तो खत्म, फिर हम हो गए मुक्त, मुक्त हो गए। फिर हमें बाकायदे हम फिर वापस आके अपने बड़े शाही बंगला लिया, हम आकर के उसी बंगले में बैठे जिसका नाम है, पहला हम आए हैं उसी बंगले का नाम था ओनवास, जिसमें ये वारंट हुए। और फिर हम लोग बाकायदे बड़ा शाही नवाब का बंगला था और हम उसी में आके रहे हैं, उसका नाम है कुंज भवन। जिस कुंज भवन में हम आके बेफिकर होके बादशाह होके रहे, अब हमारा ड्रामा में बांदेलों का पाक पूरा जीत लिया। तब अब
समर्पित कई परिवार,
अच्छा फिर आते हैं तो बाबा, उनके बाद बाबा ने क्या किया फिर मैं उसकी बात कहती हूँ। फिर आते दूसरी भी बातें, हम कुंज भवन में आ गए। अब बच्चियों की पीछे बात आती तो बाबा ने क्या किया कि बाबा इस बातों में कहा, जितना ही बाबा ज्ञान का सागर उतना कानून। बाबा ने कहा मुझे बच्चियों के साथ नहीं रहना, मेरे कारण ही घमसान होता, तो इसलिए बाबा ने जाकर के अपना बंगला कलकत्ता में छुपा दिया, माना कि भाई मैं अपने लौकिक से रहता हूँ, तो बेज है बाबा ये सभी परिवार बाबा के साथ वहाँ रहने लगा। और बहुत अच्छा सागर के किनारे पर शाही बंगला था और कृपालानी, वो भी कोई कृपालानी थे, और बहुत अच्छा एकांत का बंगला। फिर दूसरे भाई कहाँ रहे, तो बाबा ने रिजुमल इसके रतन चंद बंगला लिया। तो भाई रतन चंद फैमिली रहे और कुछ और भी ऐसे रहे।
ऊपर बाबा था,
दीदी की फैमिली रही, ऐसे एक तीसरा, फिर एक रिजुमल का बंगला लिया जिसमें फिर शांति
वहाँ जो था ना क्लिफ्टन पर, क्लिफ्टन पर
ऐसे बाप
पहले पहले वो
अच्छा मतलब
पीछे बाबा के साथ रहा,
मतलब ऐसे हमने भिन्न भिन्न बंगला लिया जिसमें एक रहे भाई लोग, एक बंगला था जिसमें रहा भाई लोग, एक बंगला था जिसमें रहा बाबा, एक बंगला था जिसमें फिर थोड़े थोड़े और भी मिल करके रहे। मेरे ख्याल में ऐसा तीन चार बंगला लाइन में थे, लेकिन सब ये क्लिफ्टन ब्रिज पर थे, वे सब वहाँ रहे। और इधर हमने लिया कुंजभवन, और कुंजभवन से आगे एक बंगला था थोड़ा, उसमें हमने रखा बच्चों को जिसका नाम गुलजार भवन, उसी में हमने रखा गुलजार नाम, उस टाइम गुलजार का नाम नहीं था,
गुलजार भवन नाम था,
उसे बंगले का ही नाम था। फिर हमने वो भवन रख बनाया, उसमें फिर बच्चे और बच्चियां रखे। तो उस बंगले में दीदी रहती थी, उनकी केयर टेकर सबकी संभालती थी, और बाबा अपने बंगले में, हम लोग अपने बंगले में, और ऐसे था। और जहाँ एक बाबा जाकर के हमेश जो रहता था, जो बाजार में बंगला था, उसमें उसके भी सामने एक कोई बंगला लिया वहाँ पर। फेरे जो हमारे बोर्डिंग में बड़े बच्चे थे, बड़े हो गए, उनको फिर वहाँ रखा, उनका मास्टर भी वहाँ रखा। ऐसा हमारे पांच सात बंगले अलग अलग हो गए, और बाकी टोटल यज्ञ की, रुद्र यज्ञ की स्थापना ये 1939 में, ये एक साल हम लोग इतने सभी चारों तरफ इधर वारंट हमारा पूरा ही पूरा, मुझे ख्याल है 2 साल इसमें हमारा बीत गया 39 में। फिर आकर के 1 साल 38 में आए, फिर 39 में हम लोग कुंजभवन में आए हैं। अब हम कुंजभवन में बात कहते यज्ञ की रचना स्थापना कहो, क्यों कुंजभवन में हम मम्मा के साथ हम रहते थे, और उस टाइम मम्मा और हम सभी बहने थे, कोई हमारे बंगले पर भाई नहीं था, और उसी बंगले पर हम 101 कन्याएं थी और कुछ 10-15 माताएं थी, सब हम कन्या उसी बंगले में रहती थी। और हमारी सारी सेनानी हमारी महेद मम्मा थी, और मम्मा के साथ हम सब सेना थे, और सारे यज्ञ का भोजन कुंजभवन में बनता था, और साइकिल पर सब जगह भोजन जाता था, बाबा के बंगलों पर उधर बंगले, बच्चों उधर, सब जगह भोजन टिफिन से साइकिल पर जाता था, लेकिन भोजन ब्रह्मा भोजन कुंजभवन में बनता था। और कुंजभवन में उस टाइम हमारा बहुत शाही बंगला था, और उसी शाही बंगले में हम रहे। ये हुई अभी हमारी यज्ञ की बाकायदे स्थापना का कार्य। अब इतना चैप्टर हमने बताया, अब आगे चैप्टर चलेगा तपस्या का, तो हाथ बता मैं यहाँ पूरा करूँ।
नहीं दादी, वो जो हैदराबाद में मम्मा कोरट में गई, जिसमें आप हम बाबा जसोता सब चले थे, जिसमें जज ने कहा हाथ को कसम उठाओ मैं हाजिर नाजिर समझ,
कराची का था
नहीं हैदराबाद में, ओम नवाज के सामने जो कचहरी थी, कचहरी थी ओम नवाज के, हम ओम नवाज,
मैंने कल तो एक केस
वो दूसरी
शिशपाल,
वो दादी दूसरी,
वो हमने कल इन्हों को सुनाया कि शिशपाल ने कैसे गालियां दी, वो हम कल सुनाया कि 101 गालियां मिली आमने सामने बाबा को, और बाबा ऐसे मुस्कुराता रहा, वो थी कलेक्टर की प्राइवेट ऑफिस।
ये था दूसरी,
अच्छा
एक तो वहाँ देवी बोली है नहीं, उसके जेवरों का केस चला, देवी बोली मैं यही तो कहती हूँ।
बोली हमारी बोली
उसमें मैं भी गई थी।
हाँ राइट
हाजिर और नाजिर दादी हम तो थे ना वहाँ सब वकील पीछे बैठे थे बेंचों पर और हम फिर इस तरफ बैठे थे बीच में था ये जज वगैरह बैठे थे उसके आगे जज के आगे वो जहाँ खड़ा किया मामा को गोल गोल था उसमें खड़ा किया मामा को तभी पहला पहला उनसे मामा से कसम उठवाया तो पहले कसम जो है कोरट का वो लियो तो मैं हाजिर नाजिर परमात्मा को रख के मैं कसम उठाती हूँ जो बोलेंगी सच बोलेंगी। तभी मम्मा ने कहा मेरे आंखों से हाजिर तो मैं देख नहीं रही हूँ
आपको
नजर नजर से भी मैं देख नहीं रही हूँ न मेरे आगे हाजिर है तो मैं झूठा कसम उठा जैसे आप कह
मैं अपने आप को हाजिर जानती हूँ मैं आत्मा हाजिर
ये असल सीधा कहा मम्मा ने उसको कहो तो मैं झूठा कसम जैसे आप कहते हो मैं कह सकती हूँ परंतु मैं अगर सच सच कहते हो कसम उठाओ तो सच्चा कसम तो यही है तो मैं न नजर से देख रही हूँ भगवान को न मेरे आगे हाजिर है ये तो सब समझ सकते हैं भगवान है देख मैं झूठा कसम उठाऊ कोर्ट में। तभी उसको गुस्सा आ गया
मैं अपने को आत्मा हाजिर नाजिर आपको भी आत्मा हाजिर नाजिर जान के मैं कसम उठाती मैं आत्मा जो बोलूंगी वो मैं सच सच बोलूंगी ये मैं कसम उठाती हूँ उसी बोल पर लगा
जाया चार पांच को कहा इसको जेल डालो अभी बांधो जेल में भेजना है बहुत धमकाया मम्मा की असल एकदम अवस्था अच्छी मुस्कुराए रही है और उसको जेल वगैरह का कोई परवाह नहीं थी मम्मा को
मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ का गीता हाँ का ये गीता है मैं कहती हूँ ये गीता है गीता भी सच बोलती मैं गीता आखिर कहती हूँ सच बोलती हूँ मैं आत्मा तुम आत्मा हम हाजिर नाजुर तुम आत्मा मैं आत्मा हाजिर नाजुर होके जो बोलूंगी वो सच बोलूंगी मैं उसका कसम बहुत हुआ।
फिर ऐसे जब वो आए ना बांधने के लिए तो वकील बैठे थे पीछे तो उन्होंने एकदम रोका कहा तो वैसे तो ये राइट कह रही है ऐसी थोड़ी रॉन्ग कह रही है चाहे हमारी ला है उसका कोर्ट का परंतु हम सोचते हैं तो जो ये हमको रियलाइज हो रहा है तो ये जो कह रही है वो तो सच कह रही है इसको हम जेल में कैसे भेज सकते हैं ऐसे ही। तो फिर सबने जब मैं जा रही थी वो हो गई ना जज को समझाने की तभी जज ने छोड़ा उसको फिर तो कई प्रश्न पूछा तो दादा के गोद में आप भी जाते हैं तो उसने मम्मा ने कहा नहीं तो कुछ ऐसी बात की
मम्मा ने कहा नहीं मम्मा ने जवाब दिया आप बाप हो आपके बच्चे हो छोटे क्या मैं आपसे पूछती हूँ हे जज साहब आप अपने बच्चों को प्यार से कभी गोदी में उठाते हो अगर आप बाप अपने बच्चों को उठा सकते तो वो भी हमारा बाप है क्योंकि मम्मा तो छोटी थी वो भी हमारा बाप है तो वो भी अगर यहाँ आप कहो कि कानून कहता है कि रंग है तो आप भी अपने बच्चों को नहीं बिठाओ तुम्हारा बाप भी नहीं बिठाएंगे।
मेरे को इतना याद है दादी मेरे को इतना याद है तो मम्मा जब भी आई बाबा को बताया ये तो बाबा ने कहा तो यानी आप गोद में कौन बिठाता है ये साका तो बिठाई नहीं सकता है ये थोड़े गोद में बिठाएगा तो इसके लिए उसने पूछा तो हम गोद में बिठाता ही नहीं है बाकी ऑलमाइटी है ये वो आके क्या भी करे भगवान है वो गोद में बिठाता है वो तो सर्वात्माओं का पिता है पर अगर साकार के लिए कहते हैं तो साकार तो गोद में बिठाता ही नहीं है ये सीधी सीधी बात है आप नाम भी कर सकते थे
ऐसे इसलिए दादा हमें गोद में नहीं बिठाता
है।
लेकिन दादा में जो भगवान आता है हमें वो हम उनके गोद में जाते खैर इसी भाषा को कहने का मतलब समझो इतनी बड़ी कोर्ट में जज बिगड़ जावे जेल और वकील तो हम ऐसा समय ही समय पर देखते थे सदैव जैसे ड्रामा अनुसार बाबा किसी न किसी को जितना वो कोई एंट्री होता था उतना ही उनके सामने में कोई न कोई ऐसे निकलते थे वही आपस में सामना करते थे और हम तो साखी होके देखते थे और अंत में जो कुछ होता था बाबा बच्चों की जीत कराते थे और वो सामने हंगामे करने वाले देखते देखते ही रह जाते थे। खैर ये भी आकर ड्रामा कराची का बताया कि आकर के हम कुंज भवन में पहुँचे। अब कुंज भवन में ये बिना बिना मंगले चले और ड्रामा ऐसा होता गया अभी तक भी ब्रिटिश राज है लेकिन बाबा को हमेशा भविष्य सामने रहता है स्वर्ग सामने। तो बाबा ने कहा ये तो किनकी दबी रही धूर में किसकी राजा खा इसलिए जो जिसका है वो सफल करो। तो मकान तो हम सभी के हैदराबाद में थे बाबा के पांच छह मकान थे पांच चार इनोके थे उनके ऐसा बाबा की प्रेरणा लेके सब मकान निकाल कर लिया। नहीं तो पहले तो ये सोचा था हम तो फिर थोड़े टाइम के लिए आए हैं फिर बाबा तो ये कहा एक साल रहेंगे वापस जाएंगे लेकिन ड्रामा ऐसा हुआ कि बस अब हमें हैदराबाद जाना नहीं है इसलिए हैदराबाद की जो भी प्रॉपर्टी थी वो बाबा बड़े प्रेरणा से सहज अच्छे अच्छे दामों से एक एक करके निकाल करते गए और वो सब की बाबा के बच्चों की प्रॉपर्टी बाबा के रुद्र यज्ञ में सफल होती गई चाहे उसमें बाबा की प्रॉपर्टी थी चाहे रतनचंद की थी और चाहे रिजुमल की थी विश्व किशोर इसी बीच में विश्व किशोर भी आया
चंद्रभुज
वो सब प्रॉपर्टी जो उनकी भी थी वो भी तो बड़ा ज्वेलर था वो आए फिर आनंद किशोर दादा भी इसी टाइम में आए हैं ऐसे मतलब और फैमिलीज भी जिन्हों जिन्हों की थी वे सब जो भी थे वे समर्पण होते रहे और अभी ये रुद्र यज्ञ एक शांति का यज्ञ हुआ बाहर का हंगामा पूरा हुआ और फिर अब बाबा ने कहा अब करना है तुम बच्चों को तपस्या। अब हंगामे पूरे हुए अब पाठ चलता है हमारी पराई और तपस्या का वो सब हंगामे पूरे हुए और अभी वो ड्रामा में वो चला। अब उस टाइम में अब थोड़ा थोड़ा एक तो वार का थोड़ा थोड़ा चलने लगा मेरा ख्याल है 39 में अब थोड़ी थोड़ी लड़ाई शुरू हुई है सेकंड वर्ल्ड वॉर 39। अब जैसे हमारा एकदम ये कनेक्शन है हमारे हंगामे पूरे हुए तब तक लड़ाई नहीं अंदर चल रहा था जैसे हमारी यज्ञ बटी शुरू हुई वैसे वहाँ बाहर की वर्ल्ड सेकंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुई। अब एक हंगामा पूरा हुआ अब दूसरा दुनिया का हंगामा चला और हम लोगों को बाबा ने कहा अब पांडवों ने शक्तियों ने जैसे तपस्या किया है सारे इस तपस्या से रुद्र यज्ञ से ही ये वायुमंडल जाएगा वाइब्रेशन जो ये सारी विनाश ज्वाला प्रज्वलित होंगी और फिर तुम शक्तियाँ और पांडवों की जीत होंगी। ये एक अब ये ड्रामा की सीन है इसलिए आप लोग अब सब तपस्या में लगो। फिर बाबा हमें तपस्या का बहुत बहुत आगे पाठ चलाया और उसी तपस्या के बीच में हमें कर्मणा भी सेवा सिखाई क्योंकि अभी तक तो हमारे पास में नौकर थे थोड़े थोड़े नौकर थे फिर धीरे धीरे वर्ल्ड वार शुरू हुई तो नौकर भी जाने लगे फिर पाकिस्तान भी आता फिर नौकर भी जाने
हैं
पाकिस्तान के टाइम लेकिन फिर हम लोग बाबा हम लोगों को भोजन हम नौकरों से नहीं भोजन सदैव इतना तो भी 150-200 हम लोग को हो गए थे और हमारा भोजन उस टाइम में इतना बनता था और हम सभी भोजन बनाते थे। फिर उसी टाइम में बाबा हमने कर्मणा सेवा भी सिखाई। अब मैं कर्मणा सेवा 5 मिनट में बताऊं। बाबा कहता था भोजन अपने बनाओ फिर भोजन बनाना फिर बंगले में गैया रखी, फिर गैयों की सफाई करना, फिर गोबर का वो बनाना, उसे चूल्हा जलाना, उसकी सफाई करना, उनका दूध संभालना, ये फिर धोबी घाट, फिर कहेंगे जाओ जा करके धोबी घाट संभालो, फिर अपने इतने सभी के मिल करके ये सब उस टाइम में भाई ये धोबी घाट पर है, हम सभी जाके कपड़ा धोते थे, ये गोबर है ग्रुप होता था, ये जा करके ये करो, फिर ऐसे करके हम सब ये बर्तन मांजना, ये वो सब बाबा ने हमें कर्मणा सेवा सिखाता गया और हम भी कर्मणा सेवा सब सीखते गए। और उसी टाइम में बाबा ने एक ये भी हमें इशारा देके, ये मामा ने हमारी सिस्टम बनाई कि हम लोग जो वहाँ रहने लगे उनका ग्रुप ग्रुप बनाया, और इसी ग्रुप की ये दादी, इस ग्रुप की ये दादी, ये ग्रुप की ये दादी, ऐसी बाबा ने दादियों को मना ब्राह्मणिया करके ग्रुप दिया, ताकि ग्रुप ग्रुप की उनकी मनसा वाचा शिव कर्मणा ये सब पालना वो दादी उनकी मना ब्रह्मणी ध्यान रखे। ऐसा करके मामा ने ग्रुप ग्रुप भी बनाया और कर्मणा सेवा भी दी, और धीरे धीरे फिर बाबा गाड़िया मोटर भी लिया, और बाबा आते थे तो बाबा दूर थे तो बाबा को कहा, रिजुमल को कहा, ऐसे बाबा तीन चार गाड़िया रखी, मामा को अपनी कार, बाबा को अपनी कार, ये सब अलग अलग गाड़िया रखी। फिर बाबा ने ये भी सिखाया कैसे गाड़ियों की भी आप लोग सफाई करो, और हम लोग उसमें सफाई करते थे, और इतना भी था उसमें अपने पास बहुत बड़ा टेनिस कोर्ट था, फिर कभी कभी टेनिस कोर्ट में बाबा भी आके टेनिस खेलते थे। लेकिन ये हमें बाबा ने शुरू से ही सिखाया कि सवेरे सबको ड्रिल करना है, हम लोग सब सवेरे उठ के और अपना निकर पेंट पहन के और ड्रिल करते थे, और फिर दिन भर हम लोग सभी और अपनी ये सेवाएं करते थे। और टाइम भोजन का सुबह को 10 बजे भोजन और फिर शाम को 6 बजे भोजन, दो टाइम हम भोजन करते थे, और सुबह को किसको चाहे तो दूध का पीते थे। ऐसा करके बाबा ने यज्ञ जैसे कुंज भवन में कुंज गली में हम रहने लगे, और ये यज्ञ की पालना का स्थापना का बाबा ने सारा कार्य चलाया। और उसके बाद हमारी चली है तपस्या, जिस तपस्या में हमारी ये ध्यान दीदार शुरू हुआ है, जिस ध्यान का पहला सैंपल हमारी दादी गुलजार सामने है। अब ये है तपस्या के बाद ध्यान दीदार का चैप्टर, अब अगर उस चैप्टर को शुरू करेंगे तो बहुत बड़ा चैप्टर, हमने यहाँ तक चैप्टर, फिर कल में अब ये लोग अपना चैप्टर सुनेंगे, हम तो कुंज भवन की बट्टी तक का आप लोग को सुनाया, अब आ गए
दादी हमारे जहाँ हम सोते थे ना, हमारे कमरे के साथ ही आंगन था छोटा, तो वहाँ सारी रात्रि थी, फुल मून था, ये गुलजार बहन एक छोटा बन्ना है, इधर से इधर
वो मुझे याद
है, बैठी बैठी इसकी देखते देखते आंसू बहता गए, मैं असला आगे खड़ी थी, आखिर इसको पता ही नहीं पड़े, आंखें बंद हो गई, गई विद्या देखो फलानी फलानी देखो, क्या गुलजार को हो गया, क्या हुआ, बाबा ने कहा अब क्या इस गिर न जावे, इसको आप उठा के अंदर कमरे में।
अभी वो कैसे हुई ध्यान में क्यों गई, मैंने कहा फिर वो तपस्या का पार्ट है, क्योंकि बाबा ने बट्टी की थी,
कमाल की इसके, कैसे 7 दिन न खाना न पीना और आंखें बंद में सब लिखना,
मैंने वो पहला पहला चार्ट था जो बाबा ने कहा 8 दिन सफेद खाना है, 1 टाइम खाना है और मौन में रहना है, कोई को बात नहीं करनी है, और खास ग्रुप दिया उनों को कमरे के अंदर ही रहना है, कोई को टाट नहीं करनी है, इतने रात को 1 बजे से सुबह 6 बजे तक योग करना है, दिन भर योग करना है, ऐसा बाबा ने 8 दिन स्ट्रांग बच्ची दी थी हम लोग को, उसी बच्ची का कहा अब गुर्जा बहन का पाठ है जो ये दादी कहती है ध्यान के, तब मैं यहाँ चैप्टर पूरा करती
हूँ। बहुरूपी किसको कहते हैं, हमको बहुरूपी का शब्द या नहीं था, ये सब रहा है।